साधना का लक्ष्य बना लेके हमें परमेश्वरमय होना है। महेश्वर जिससे महेश्वर है उसको हम जानते हैं, सासू जिससे सासू है उसको मैं जानती हूं, बहू जिससे बहू है उसको मैं जानती हूं, देरानी और जेठानी जिससे देरानी जेठानी दिखे उसको मैं जानती हूं। ऐसा पक्का करो आपकी भक्ति यूं चाले, वो एक माला घुमाओ ऐसा विचार करो तो 10 माला घूम गई। इतना ऊंचा ज्ञान है, ईरान तो ऐसी है ये तो वैसी है, लेकिन जिससे दिखती है उसको मैं जानती हूं, उसके अंदर भी जो देख रहा है उसको भी मैं देखती हूं और इसके अंदर भी जो देखता है उसको भी मैं जानती हूं। चलो होने दो जो होता है। इतनी सरल समझ है। मेरे गुरुजी थे छोटे बालक, तो उनकी दादी मां उनको गोद में लेके प्यार करती थी लीलाराम जी को। तो डोकरी हो गए तो जरा गोडा दुखे तो बहू हंसे, फिर वो दादी मां मेरे गुरु की दादी मां मेरे गुरु बालक थे बोलती देखो ये बहू है मेरी मस्करी कर रही है, लेकिन मेरी मस्करी नहीं शरीर की मस्करी। वो बोलती खांसती है बुढ़ी है बीमार है, बेटा मैं बीमार नहीं हूं, मैं नहीं खांसती, खांसता है तो गला खांसता है, बीमार है तो शरीर है, मैं तो इसको जानने वाली हूं। ये मरने वाले शरीर को मानती कि हमारी दादी मां है, ये शरीर में अभी हूं, पहले कई शरीर आए और चले गए, मैं तो वो हूं, लेकिन ये जानती नहीं बिचारी, इसलिए मेरी मखोल करती, मेरे को दुख नहीं होता। तू भी ऐसा समझ ले बेटा। ओ दादी मां उस लीलाराम बालक को जो संस्कार दिए वही लीलाराम में से लीलाशाह और फिर उसी लीलाशाह की कृपा से आसुमल से आशाराम और करोड़ों लोगों तक तेरी प्रसादी पहुंच रही है भाई। मूर्ख लोग तो उस डोकरी को वही बुढ़िया है डोकरी है, लेकिन वो उसको गुरु का ज्ञान कैसा पच गया, कितनी महान आत्मा। एक एक वृद्धा ने कितना बच्चे को संस्कार डाला पोते को, और उसके संस्कार से उन्होंने कईयों को दिए और हमको दिए और हमारे द्वारा कईयों तक पहुंच रहा है, ये भगवान का प्रसाद। कैसा दिव्य प्रभाव है, कितना दिव्य ज्ञान है। इधर उधर की बातें करके अपनी बुद्धि को जो परमात्मा को पाने की योग्यता है उसमें कचरा डाल देते। एक बार कोई सेठ आया, हम मां साधना न कर पाई, तुम मैं साधना नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो आपकी बस कृपा करके पार कर दो। बुद्ध ने कहा कुछ सेवा भी करो। बोले भंते हुकुम करिए, सब तुम्हारा है, माहिनेरी छड़े ताके सब नहीं छड़े, लेकिन मेरे को वो दे दो जो आपको मिला है। बुद्ध ने कहा अच्छा अभी जाओ, कल मैं तुम्हारे यहां भिक्षा करने को आऊंगा, आप मेरे घर भिक्षा लेंगे। आए है सेठ गदगद हो गया, पत्नी को कहा, दूसरों को अच्छी अच्छी वैरायटी बनाने वाली सहेलियों को बुला लो, एक दो हलवाई बुला लिया। भाई संत अपने आने वाले, क्या क्या बनाया है, लेकिन सब बना लेकिन खीर नहीं बनी तो सब अधूरा है। खीर को रस राज कहा है, रसीले भोजनों में रसों का राजा है खीर, लेकिन कई लोग सब्जी भी खाते और खीर भी खाते, वो ठीक नहीं। सब्जी में नमक पड़ता और खीर में दूध है, वो अंदर जाके विकृति होती। तो सेठ ने रस राज बनवाया, जैसे सीता जी की अशोक वाटिका में रावण ने रख ली तो सीता जी के खाने पीने की चिंता, इंद्र खीर भेजते थे रस राज, सीता जी उसी से तृप्त रहती थी। रसराज तैयार किया, बुद्ध आए, भिक्षा पात्र धरा, सेठ फूला न समाता तो मैं ही भिक्षा कराऊंगा बनते को, तो क्या बनाया तो ये वैरायटियां है। बोले अच्छा हो रसराज ही दे दो, मतलब खीर दे दो। तुम्बा आगे क्या बुद्ध ने, तो सेठ बोलता है महाराज ये तो गोबर से भरा है, इसको पहले खाली करे। बोले नहीं नहीं खाली क्यों करे, इसी में डालो भिक्षा। बोले महाराज ये आपके काम में नहीं आएगी, मेरी खीर बिगड़ जाएगी। आपको तो सब वैरायटी आपकी, लेकिन इस तुम्बा को पहले इसको गोबर निकालना पड़ेगा, फिर धोना पड़ेगा, उसके बाद रसराज इसमें आएगा। बोले तेरे चार पैसे का रसराज देने के लिए तू गोबर निकलवा के फिर देना चाहता है, तो अब तेरे में दुनियादारी का इतना गोबर भरा है तो मैं अपना रसराज ब्रह्म ज्ञान कैसे डालूंगा, कैसे रहेगा? किसी के दिमाग में कथा पड़ा है तो किसी के दिमाग में एफडियां घुसी है, किसी में कुछ घुसे हैं, तो इतना सारा सा खोपड़ा तुम्बा और कितना भरा हुआ है। अब दो उपाय, या तो फिर कचरा निकाल के साफ करके आए तो रसराज आवे, या तो रसराज इतना धार होती जाए रसराज की कि गोबर के कण धुलते जाए, खीर भी बढ़ती जाए, धार चालू रहे, तभी भी रसराज शुद्ध आखिरी में रह सकता है। या तो खूब सत्संग की रसराज पड़ता रहे गोबर कम होता रहे, या तो इनकी वासनाओं को छोड़ के एकांत में रह के ध्यान प्राणायाम करके ये कचरा निकाल ले और फिर सत्संग का रसराज ले। न अकेले निकाल पाते हैं, न अधिक से अधिक धार भी झेल पाते, थोड़ा सा सुना फिर जाए गोबर भरने को, इसीलिए कठिन हो रहा है ईश्वर प्राप्ति। मैं घर में भी रह के तो उधर भी आश्रम में या इधर भी रह के सेवाई करनी, तो घर में भी रह के सेवा करते भाई, वहां मेरा और तेरा समझ के अंता ममता का गोबर इकट्ठा होता और वहां सब ईश्वर का समझ का सेवा हो जाती। जितना यहां रहने वालों को सेवा करने वाले को सहज में सत्संग मिलता और गोबर धुलता है, उतना घर में रहने वालों का नहीं धुल सकता। तो वो जानते ऐसे आप भी जानते, लेकिन आप जानते इस बात में आप टिक नहीं रहे। आप जिससे जानते हैं उस जानकारी में आप टिक नहीं रहे, आप जो छूट जाता है उसमें मन बुद्धि को लगा देते। अभी इस समय का जो माहौल है, एकदम तपस्वी और ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति की सुंदर सुंदर जिज्ञासा वाले लोगों का माहौल बना है। इसको सुनने मात्र से हजारों कपिला गौ दान करने का फल होता है, सारे तीर्थों में स्नान करने का फल फलित हो जाता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सारा दान पुण्य कर लिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर लिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिर। तो पतियों का पति कौन है? वो आत्मा ब्रह्म है। देवों का देव कौन है? कि वही आत्मा ब्रह्म है। ईश्वरों का ईश्वर कौन है? कि ब्रह्मा में भी अगर वो चैतन्य ईश्वर नहीं है तो ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे करेंगे? विष्णु भी वो चैतन्य स्वरूप नहीं हो तो पालन कैसे करेंगे? तो विष्णु ब्रह्मा महेश ये सब का जो आत्मा है वो मेरा आत्मा बन के बैठा है, मैं उसको जानता हूं। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशे भया, उस आत्मदेव को जानने से सारे बंधनों से छूट जाता है। बस उसको जानने की ललक हो, उसके लिए तड़प हो, बस 3 घंटे एक पहर ओमकार का जप करे शांति से, एक पहर उसी ऐसे सत्संग के विचारों का ध्यान शांति, एक पहर शास्त्रों का अध्ययन करे, एक पहर सत्पुरुष की सेवा करे, परमात्मा साक्षात्कार। जो छोड़ के मरना है उसके पीछे मरे जा रहे हैं, और जो कभी छूटे नहीं उसको पाने की ललक नहीं। मंदा मंद मताया, मति मंद हो गई। इतना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वादास का पला न पकड़े कोई। फिर दुख आपको काहे को छुएगा? अभी भी दुख आपको नहीं ले गया, दुख चला गया आप नहीं गए। सुख आपको नहीं ले गया, सुख चला गया आप नहीं गए।
गए क्या? मौत आई चली गई, हजारों बार मौत आई, हमारा क्या बिगाड़ा उस निगुड़ी ने, जो अभी आएगी तो बिगाड़ लेगी। मौत हमको मार सके ऐसी ले आओ, मौत त्रिभुवन में कहां रहती है, मारेगी तो जो हम नहीं है, आठ मास का शरीर उसको मारेगी, हमको काय को मौत मारेगी। दुख हमको काय को दुखी करेगा, दुख दुखी करेगा मन को, हम उसको भी देखने वाले भाई, हमको काय को डराएगा, डराएगा तो मन को डरे, मन डरे न डरे उसकी मर्जी, हम उस डर को भी जानने वाले। हाय हाय, इतना सरल है परमात्मा, पतियों का पति इतना आसान है, देवों का देव इतना आसान है, ईश्वरों का ईश्वर इतना आसान है। हे राम जी, फूल पत्ते और टहनी मसलने में तो परिश्रम है, उस आत्मदेव को जानने में क्या परिश्रम, लेकिन उल्टा जान बैठे उसको निकालने के लिए प्रणव का जप है, साधना है, सत्संग है, गुरु सेवा है। ये कपड़े को, कपड़ा स्वतः सफेद है, लेकिन जब मैला हो जाता है तो साबुन से मैल हटाया जाता है, इसकी सफेदी तो स्वतः सिद्ध है। ऐसे ही चित्त के ना समझी के संस्कार साधना से हटाते, बाकी परमात्मा तो पहले भी था अभी भी है। परमात्मा को नहीं जानते तभी भी तुम आत्मा परमात्मा, लेकिन वो मैल हटने से दुख मिटते हैं सदा के लिए, मुक्तात्मा हो जाते। ऐसा नहीं कि आसुमल को, आसुमल के अंदर गुरुजी ने परमात्मा डाल दिया अथवा कोई परमात्मा को बुला के आसुमल को दिखा दिया और आशाराम बना दिया, नहीं, जो आसुमल था वही आशाराम, जो लीलाराम थे वही लीलाशाह। ये तो खाली बाहर की उपाधि से नाम बदले, बाकी वो तो नाम नहीं भी बदलो तो भी क्या, मुझे मेरे प्रभु तत्व का मालूम न था, नाहक हक से जुदा था मुझे मालूम न था। सोच रहे कोई देवता आएगा हमारा दुख मिटाएगा, कोई फलाना आएगा हमारा दुख मिटाएगा, आएगा दुख मिटाएगा, फिर दुख आएगा, फिर आएगा मिटाएगा, करते करते तुम भी थक जाओगे वो भी थक जाए। जिसको कभी दुख नहीं होता उसको मैं रूप में जान लो तो तुम उसको भी मदद करने वाले हो जाएंगे, जो तुम्हारा दुख मिटा रहा है उसका दुख मिटाने वाले बन जाओगे। कितनी ऊंचाई है, समर्थ रामदास कहते थे कि भैंस के सींग पर राई का दाना टिके उतनी देर भी अगर तुम असावधान रहे और उस असावधानी के अनुरूप करने लगे तो तुम्हारा पतन हो सकता है। इसलिए सतत सजगता है, सावधानी है। बोलने को तो बोल देते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, बकवास करते हैं, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर इसका अमल करे तो परमात्मा साक्षात्कार नहीं हो जाए, ये तो बकवास। चलो दूसरा बकवास करे, इससे तो शास्त्रीय बकवास, कुछ न कुछ तो पुण्य ही होगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, एकलव्य ने गुरु मूर्ति गारे की बनाई, सीधा आबहू फोटो नहीं था के मेरा का, गारे की मूर्ति बनाई मिट्टी की, अरे एक टक एकलव्य भील, एक टक ध्यान मूलम गुरु मूर्ति में ऐसा आगे बढ़ गया कि धनुर्विद्या में अर्जुन को भी पछाड़ दिया। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। आप क्या कर रहे हैं, गुरु के वाक्य को मंत्र मूल बना रहे हैं कि वासना मूलम अहम वाक्यम, वासना मूलम अहम निर्णयम। अरे वासना अपन नहीं मिटा सकते, इसलिए गुरु के शरण आए, हमारी वासना मिटे, लेकिन अपन ऐसे चालबाज बन जाते कि अपनी वासना के अनुसार गुरु से सम्मति ले लो। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो शिष्य ऐसे हो जाते हैं कि ऐसा व्यवहार करते मानो गुरु के गुरु का काम उन्हीं के हवाले है और गुरु को ही शिष्य की तरह उनके अनुरूप चलना। कई लोग कपट करके बेईमानी करके अपने अपने गुरुओं को ऐसे घुमाते रहते चलाते रहते कि तोबा। तो अब क्या करें बाबा, क्या करें, बस कहां कहां गलती होती है सत्संग से पता चलता है और गलती निकाल के अपना काम बना लो, और क्या करना है। मूढ़ मनुष्य एक ही जन्म की गलतियों को बढ़ा के हजारों 84 लाख जन्मों की नरक यात्रा कर लेता है और बुद्धिमान 84 लाख जन्मों के संस्कारों को मिटा के अपने परब्रह्म परमात्मा की यात्रा कर लेता है। अब आप मूढ़ों का अनुकरण करो अथवा तो उत्तम शिष्य का अनुकरण करो, आपके हाथ की बात है। शास्त्र कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। जो मूर्ख है और मूर्खता छोड़ना नहीं चाहता उसको ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिले तो भी फायदा नहीं उठाता। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा स्वरूप मूरख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सब। तो भगवान को प्रार्थना करे कि भगवान सतबुद्धि दे। चाणक्य जी वो यही बोलते थे, तू मेरा धन छीन लेना, मेरे गहने गांठे छीन लेना, मेरा मकान और सर्वस्व छीन लेना, लेकिन प्रभु मेरे से सतबुद्धि मत छीने। सतबुद्धि बनी रहेगी तो ये सारी चीजें पीछे पीछे घूमेंगी। बस भगवान से सतबुद्धि, हे प्रभु सतबुद्धि, दयालु तू दया कर, सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करो। सच्चे हृदय से ना आए तो ऐसे ही करोगे, प्रभु तू सतबुद्धि दे, ये जन्म हमारा व्यर्थ न जाए, छोड़ जाने वाली चीजों के पीछे हम बेईमान न बने, जो कभी नहीं छूटता है उसमें मेरी प्रीति हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तेरी भक्ति का दान। अस्तो मा सद्गमाया, हमें असत्य से बचाकर तेरी सत्य प्रीति दे दे। तमसो मा ज्योति गमाया, हमें अंधकार से बचाकर आत्म ज्योति जगाने की दिशा दे दे प्रभु। मृत्यु और माम अमृतम गमाया, हमें जन्म मरण से बचाकर अपने अमृत आत्म स्वरूप में जगा दे प्रभु। हे माधव, हे गोविंदा, हे प्रभु, हे रामा, हे श्यामा, हे हरि, ओ हरि हरि माना पाप ताप और बेवकूफी हर ले, ओ माना अपना आनंद और ज्ञान अपना प्रकाश भर ले। शांति। मधुर प्रीति खोते जा और उसी के होते जा जिसके तुम थे, जिसके तुम हो। जिसके तुम रहोगे, हे वासुदेव, हे गोविंदा,
हे आत्मदेव, ओम हरि अच्युत प्रभो दीन दयाल बिरद समारी हरौनाथ मम संकट भारी। वासना का वेग में बहना बड़ा भारी संकट। और तेरी प्रीति में बहना बड़ा भारी शुभ घड़ी है, शुभ दिन। तेरे नित्य नवीन रस में छलकना ये बड़ी रहमत है तेरी। और वासना में बहते जाना नाली में बड़े भारी संकट की है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव भजन सुमरण न होई। तेरा भजन, तेरा सुमरण, तेरी प्रीति नहीं होती वही विपति की वेला है। मंगल घड़ियां है कि प्रभु के सुमरण में शांति मिले, प्रभु के ज्ञान में हम डूब रहे हैं। आनंद है, आनंद है, माधुर्य है। अंतर आत्मा में विश्रांति है। इसका बदला हम क्या दे सकते हैं? अगर ऐसे हितेशी गुरु के ऋण को चुकाने बैठे तो हमारी ये संपत्ति कोई माना नहीं रखती। लेकिन ऐसे गुरु से अगर विश्वासघात करे तो हमारे पाप का भी कोई अंत नहीं। गुरु हमें ब्रह्म बनाना चाहते और हम गुरु से गद्दारी या विश्वासघात करें या उनके सामने पड़े तो उसका फल तो क्या होता होगा, उसका वर्णन कौन करे। गुरुद्रोह से बढ़कर कोई बड़ा पाप नहीं त्रिभुवन में, और पाप का तो प्रायश्चित है। गुरुद्रोही के पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं। गुरु से द्रोह करे और आराम से नींद आ रही है तो कितना हृदय अपवित्र हो गया। जो गुरु हमारे जन्म जन्म के पाप ताप मिटाकर हमको ईश्वर का रंग रंग लगाना चाहते, उस गुरु से भी गद्दारी और द्रोह करने वाले को आराम से नींद आती तो कितना अंतःकरण मलिन है। जिसको अपने पाप की पीड़ा नहीं होती उसका कितना पाप के साथ तादात्म्य है। अपना कपट जिसको दिखता नहीं वो कपट के साथ कितना उत्प्रोत हो जाता है। अगर अपनी गलती और अपना पाप दिखता है तो शुक्र मनाओ कि कुछ भगवान की कृपा है। अगर अपनी गलती और पाप दिखता ही नहीं तो सिर पछाड़ो कि कितनी शैतान की माया जाल में फंस गया। सफाई तो कोई भी मार देगा, गुंडा भी सफाई मार देता है, डाकू भी सफाई मार देता है, कि इसीलिए हमको डाका डालना पड़ता है। बचाव के लिए सफाई मारने वाली बुद्धि तो तीन पत्ते वालों के पास भी होती है, चीटरों के पास होती है। लेकिन वो चीटर दूसरों को क्या चीटिंग करते हैं, अपने को ही चीटिंग कर रहे हैं अपने कर्मों के कारण। भगवान को सच्चे हृदय से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे दिल में तेरी प्रीति जगे, ऐसे ही कर्म मेरी मति तेरे ध्यान भजन में और तेरी प्रसन्नता में लगे, ऐसी दया कर प्रभु। ओम 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 नारायण 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 हरि 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 हरि। जैसे घर में पुराने फूलमाला अथवा पुराने टूटे फूटे बर्तन अथवा बकरी के खुरों की धूल
बिल्ली के पैरों की धूल घर में रहने रखने से कितना भी धनवान आदमी हो कंगाल हो जाता है, ऐसे ही मुंह गंदा झूठा और दातन किया बिना का अथवा हाथ झूठे और सिर पे रखे या इधर उधर करे तो उसकी भी पुण्याई और बुद्धि मारी जाती। सुबह नींद में से उठे तो शरीर को बराबर खींचे। बिल्ली और कुत्ता जब नींद में से उठता है तो शरीर को कितना बढ़िया खींचता है। तो और जानवर तो कभी कभार बीमार पड़े और मनुष्य खूब बीमार पड़ता है और बिल्ली कुत्ता जल्दी बीमार नहीं पड़ते और सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्योंकि सुबह नींद में से उठते तो शरीर को खींचते, आलस निकालते, तो अपनी आत्मा की शक्ति विशेष ले आते हैं, उसके लिए वे ज्यादा चपल होते हैं। तो आप भी नींद में से उठो तो शरीर को खूब खींचो दो मिनट, फिर एकदम ढीला छोड़ दो, तो शरीर में जहां जहां कमी है वहां वहां वो कमी चली जाए। बूढ़ा आदमी टॉनिक खा खा के थक गया, फिर भी उसकी कमजोरी नहीं गई। जब उसको किसी महापुरुष के सत्संग में समझ में आ गया कि शरीर को खींचने से आत्मा की शक्ति, आरोग्य की शक्ति आती है, वो ऐसा करने लगा तो बोले दवाइयां खा खा के वो ताकत और वो स्फूर्ति नहीं आई जो बाबा के सत्संग से एक शब्द समझने में मेरा लाभ हो गया। तो सत्संग तो शारीरिक स्वास्थ्य देता है, मानसिक प्रसन्नता देता है, बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश देता है, और सच्चे संत तो सच्चे पाशा होते, सच्चे राजा होते। एक बार जहांगीर राजा ने गुरु हरगोविंद को पूछा कि महाराज आपको लोग सच्चे पाशा बोलते, सच्चे राजा बोलते, तो वैसे तो राजपाट तो हमारे पास है, आप काहे के राजा महाराजा, लेकिन आपको तो सच्चे पाशा बोलते, सच्चे महाराज बोलते। गुरु हरगोविंद सिख धर्म की छठी गद्दी वाले छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने कहा कि बादशाह जहांगीर कभी भगवान करेगा रूबरू इसका तुमको जवाब मिल जाएगा। दिन बीते, एक बार गुरु हरगोविंद सिंह और बादशाह जहांगीर आगरा के जंगल में विचरण करने गए, वन विहार, दोनों का अपना अपना खेमा लगा था। किसी गरीब गुजर के कान बात आई कि सच्चे पाशा अपने आगरा के पास वाले जंगल में आए। अब वो गरीब किसान पटेल गुजर जो जन्म जन्म के पाप ताप मिटा दे, जिसकी वाणी भगवान को छू कर आए, ऐसे सच्चे पातशाह के लिए मैं क्या ले जाऊं। रज का हरा भरा था, रज का काटा और एक गठरी बनाई सच्चे पातशाह के घोड़े को खिलाऊंगा। दूसरा जो कुछ कंदमूल था वो भी उसमें डाल। वो चलते चलते खेमे के नजीक आया, बोले सच्चे पाशाह, तो जहांगीर के आदमियों ने कहा कि क्या है, बोले मुझे मिलना है, मुझे दर्शन करना है, मुझे सच्चे पाशाह को मत्था टेकना है। बोले सच्चे पाशाह को मत्था टेकना है, लेकिन ये तेरे घास का बंडल क्या ले आया है, ये बाहर छोड़। बोले नहीं, मेरे सच्चे पाशा दे जो सेवा करता है उस सेवक दी सेवा हो जाए। घोड़ा सेवा करता है, मेरे सच्चे पाशा के सेवक की सेवा तो कर ला, सच्चे पाशा की सेवा तो मेरे नसीब में होगी तब होगी, सेवक के सेवा कर ला। अरे ये नहीं हो चलता है, सच्चे पाशा का दीदार कोई मजाक की बात है। बोले नहीं, लेकिन मेरा भाग्य आज खुला, मैंने सुना, मैंने जाने दो,
भगवान तुम्हारा भला करेगा, रब तुम्हारा कल्याण करेगा, अल्लाह ताला की दुआई। जब वो गिड़गिड़ाने लगा तो जहांगीर जो बैठा था अंदर खेमे में उसने इनकी रगजग सुनी। जहांगीर ने कहा इस भक्त को आने दो आने दो। उस बूढ़े ने भक्त ने हरगोविंद साहब को देखा नहीं था तो उसने तो जहांगीर को ही हरगोविंद साहब समझा। उसने अपना बोझ का रखा सच्चे पाशा ये कबूल पे और एक टक्का रखा और बड़ा इज्जत से मत्था टेका। सच्चे पाशा आज मेरे कई जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ जो आपके दर्शन हुए, आपका नाम तो सुना था सच्चे पाशा, अब मेरे पर रहमत बरसाओ, ऐसे वचन सुनाओ कि मेरी मोह माया मिट और मेरे दिल में जो दिलबर भगवान है उसका रस आ जाए, उसका ज्ञान आ जाए। सच्चे पाशा मेरा यह लोक तो पूरा हो गया, परलोक दा आप ही तारणहार हो। हे सच्चे पाशा मैं आपकी शरण हूं। जहांगीर ने हमारी भक्ति भाव की हम कदर करते, लेकिन परलोक बरलोक की ये वाहियात बातें मत करो, मैं तुमको एक दो रियासत दे देता हूं। घोड़े होंगे, गाड़ी होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, मजे से जिंदगी जियो। तुम आज मेरे भक्त हो तो मैं तुम्हारे लिए सच्चा पाशा भगवान। तो उस आदमी को आश्चर्य हुआ कि लगा ये आप सच्चे पाशा। बोले हां मैं जहांगीर सच्चा बादशाह, कई रियासतों का दाता मालिक हूं, सारा सुख सुविधाएं आनंद मौज मैं खुदा का खास सच्चा बादशाह भेजा हुआ। उस आदमी ने टक्का उठा लिया वापस। बोले सच्चे बादशाह मैं गलती से यहां आ गया, आप सच्चे बादशाह नहीं दिखाई देते, आप कच्चे पाशा दिखाई देते। बोले कैसे? बोले आप तो मेरे को कच्ची चीजें देते हैं, एक दो रियासत देंगे वो तो यहीं रह जाएगी, घोड़े गाड़ी महल मकान देंगे ये कच्ची चीजें यहां रह जाएगी, आप कच्चे पाशा है, मैं गलती से आ गया, माफ करना बादशाह जहांगीर, मैं समझा था कि आप गुरु हरगोविंद साहब सच्चे पाशा हैं, लेकिन आप पाशा जहांगीर कच्चे पाशा है, ये कच्ची चीजें तो मुझे माया में फंसा देगी, अभी थोड़ा सा है तो इतनी ममता और ज्यादा होगी तो ज्यादा ममता और वो भी छोड़ के मरना, ये शरीर भी अहम पड़ जाएगा तो तुम्हारा दिया हुआ इतना राज महल मेरे काम में क्या आएगा, मुझे तो सच्चा सत्संग मिले, सच्चा नाम का दान मिले और सत्य आत्मा परमात्मा का ध्यान मिले, ऐसे सच्चे पाशा के पास जाने। उसने वो गठरी घास की उठा ली और जो टक्का रखा था जहांगीर के चरणों के नजीक वो भी बुद्धि ने वापस उठा लिया, मानो जहांगीर के मुंह पर लपड़ाक पड़ गई। जहांगीर समझाता है कि मैं ही सच्चा पाशा हूं, लेकिन वो किसान जानता है कि जो सत्य स्वरूप परमात्मा का सुख दे, सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान दे, सत्य स्वरूप परमात्मा के नाम जपने की रीत बताए और सत्य स्वरूप परमात्मा के आनंद में दिल को सराबोर कर दे, वो ही सच्चे पाशा, सच्चे सदगुरु, सच्चे तारणहार होते हैं। ऐसे ही जगन्नाथपुरी में एक भक्त हो गए जगन्नाथ दास। वे भक्त तो क्या थे महाराज, नम्रता की मूर्ति थे। सच्चे पाशा श्री हरि को, भगवान को, गुरु को अपना दिल दे बैठे थे। भक्त जगन्नाथ सुबह उठते, शरीर को खींचते, ढीला छोड़ते, थोड़ी देर शांत बैठते, दातुन आदि करते, जो पेस्ट करते हैं उनके दांत 50 साल 45 साल में खराब हो जाते हैं और बहुत सारी दवाइयां करते करते अंत में दांतों के मरीज बने रहते, लेकिन जो नीम का दातुन करता है अथवा बबूल का दातुन करता है तो उसके दांत जल्दी खराब नहीं होते। मेरे गुरुजी 93 साल के थे, उनके दांत ठीक थे
और मैं पेस्ट करता था तो मेरे दांत खराब हो गए, पेस्ट फिर सावधान हो गया और ब्रश करना पेस्ट करना छोड़ दिया, अभी मैं नीम का दातुन करता हूँ। कभी कभी वो पहले के दांतों को जो पेस्ट लगाकर मसूड़े कमजोर कर दिए हमने, तो उसके लिए क्या करता हूँ, आप सबके लिए बहुत अच्छी चीज है, बाबुल के पेड़। एक होता है देसी बाबुल, दूसरा होता है विलायती बाबुल। तो जो देसी बाबुल होता है उसकी फली होती है बड़ी बड़ी, वो फली अभी सीजन है, गिरती होगी खेतों में, वो फली इकट्ठी कर लो, उसको अच्छी तरह से लोहे के बर्तन में अच्छी तरह से सेक दो, काली कर दो, फिर उसको कूट के पाउडर बना दो, थोड़ा सा सिंदूर नमक आदि डाल दो, वो अगर रगड़ते हो तो दांतों में कितने भी अंबार जाते, खारा खट्टा खाते ना तो दांत कैसे हो, वो एक दिन में ही ठीक हो जाते, मसूड़े मजबूत हो जाते, दांतों की कमजोरी दूर हो जाती। हजारों लाखों रुपए की डेंटिस्टों की अंग्रेजी दवा है, उसके आगे कोई माना नहीं रखती। ऐसी चीजें तो आपके खेत खली में खूब पड़ी। बबुल के पेड़ तो बहुत है और उसकी फलियां भी बहुत है, वो फलियां ली और उसको अच्छी तरह से सेक दी, काली जैसी कर दी और फिर कूट दिया, पाउडर हो गया, बस दांतों की कोई भी बीमारी हो यूं जाती। कभी भी दांत हिसा वैसा कभी मेरे को होता है तो मैं जरा सा वो पाउडर रखता हूं, रगड़ देता हूं, बस महीना दो महीना छुट्टी, अगर दो चार दिन लगातार रगड़ूं तो सदा के लिए अच्छा हो जाए। तो ये तो बाबुल की फलियां तो तुम्हारे दांतों के रोगों को मिटाएगी, लेकिन सत्संग का फल तो तुम्हारे 84 लाख जन्मों की पीड़ाओं को मिटाता है। इसलिए वो सत्संग देने वाले सच्चे पातशाह का ज्ञान अपने जीवन में जगन्नाथ को था, जगन्नाथ दास को, वो मेरे सब कुछ है, मेरे बंधु है, मेरे सखा है, मेरे सेवक है, मेरे सब कुछ। भक्त जगन्नाथ बूढ़े हुए, उनको शरीर की स्थिति होती है तो शरीर लाचार हो गया, बाथरूम में संडास में जाना आना उनके लिए कठिन हो गया, फोड़ा हो गया था, पड़े रहते थे ऊपर के मंजिले में जो मकान था उनका अकेले, तो फोड़ा और फिर कभी रात सवेर देर सवेर रात को उठना पड़े तो लगता कि कोई सेवक भी नहीं है, बेटा भी कहाँ बाहर कहाँ ही क्या, वो तो संत बन गए थे, बेटा बेटी तो क्या है, बेटा भी तू है, पिता भी तू है, सब तू है। एक लड़का आता और उनका हाथ पकड़ के उनको संडास में ले जाता शौचालय, फिर उनको हाजत वाजत हो जाती, स्नान कराता, कपड़े बदलवाता और सुला देता, भोजन भोजन करा देता। जब तक फोड़ा था तब तक वो लड़का आता सेवा करता। एक दिन पूछा कि बेटे तुम कहां से आते हो, बोले मैं कहीं से भी आ सकता हूं। ऐसा कैसे बेटे, तुम किसके बेटे हो, बोले जो मुझे अपना बेटा बनाता है मैं बेटा, और जो मुझे सखा बनाता है उसका मैं सखा, जो मुझे जैसा मानता है उसके लिए मैं वैसा। भक्त जगन्नाथ रोमांचित हो गए, प्रभु प्रभु आप ही हे मेरे जगन्नाथ, हे मेरे सच्चे प्रभु आप, अगर आप इतनी सेवा चाकरी करते इससे मेरा फोड़ा ही मिटा देते तो आपके लिए क्या कठिन था कि आप इतनी कठिन सेवा करते हो। भगवान ने कहा जगन्नाथ दास, फोड़ा तुम्हारे प्रारब्ध वेग से खान पान की जुआनी में खट्टा खारा खाया, उस बदपरेजी के कारण प्रकृति का नियम है, तो प्रारब्ध और प्रकृति के नियम को पालन करने के लिए तो मैं रामा अवतार में हाय सीते हाय लक्ष्मण करता हूं, ऐसे अब तुम्हारी भक्ति से बंध कर मैं तुम्हारा सेवक होकर आया, इसमें क्या बड़ी बात है। तो नंगे पैर गरीब गुरबे यात्री जो पंचकोशी यात्रा करते हैं, धरती आग उगल रही है और सूर्य भी अब न तपूं तो कब तपूं, ऐसे भी चरणों के नीचे तपन, सिर पर तपन,
लेकिन हृदय में आस्था है और सिर पर सामान की गठरी है और आंखों में चमक है और होठों में मुस्कान है, ये सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति का सच्चे पाशा का तो प्रसाद है। भगवान बोलते प्रसादे सर्व दुखा नाम, आप भगवत रस का प्रसाद पाइए। भगवान मेरे सच्चे हैं, शरीर मिथ्या है लेकिन मेरा प्रभु तो सत्य है। दुख मिथ्या है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, लेकिन दुख को जानने वाला तू पहले था अभी है बाद में रहेगा, तू सच्चा बादशाह है। जहां हम भोगी बने वहां शक्तिहीन हुए, जिसमें सुख माना था हम उसी के अधीन हुए। साध संग मिली सच्चे पाशा, तेरी भक्ति की धारा मिली। जैसे भक्त जगन्नाथ को भगवान साकार रूप में एक युवक के रूप में सेवा करते, किसी को भगवान अंतर प्रेरणा देकर उसका हौसला बुलंद करते हैं, तो किसी की सेवा भगवान संत के हृदय से सत्संग के द्वारा सद्बुद्धि देकर उसका बेड़ा पार कर देते हैं। वो सत्य स्वरूप न जाने किसकी किस ढंग से उन्नति करे, उसकी लीला निराली। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में नहाने से धर्म लाभ होता है, संत मिलते तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार लाभ होते हैं, लेकिन जब सतगुरु मिलते हैं, दीक्षा मिल जाती है, दिशा मिल जाती है साधन भजन करने की, फिर भगवान दूर जो थे वो अपने दिल भर देवता बन जाते हैं। जो मरने के बाद मिलने वाले होते हैं वो जीते जी उसका अनुभव होने लगता है। लख लख प्यालियां भर भर पिए, धन की वाहवाई की शराब की मौज शौक की, फिर भी हृदय में वो सच्चा रंग नहीं लगता। लख लख प्यालियां भर भर पिए, चढ़े न मस्ती नैन, एक बूंद सत्संग की मस्त करे दिन रहे। तो आप सत्य स्वरूप ईश्वर का संग करो। सुबह नींद में से उठो, मन को पूछो के कौन उठा, शरीर तो जड़ है और आत्मा अमर है, बेटा तू उठा है। अब ऐसी जगह मत लगना जिससे पाप हो जाए। तू जिसकी सत्ता से जागा है उसकी स्मृति करके उसको परमात्मा को अच्छा लगे ऐसे काम करेगा ना। प्रभु मेरे मन को संभालना, प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मेरे गोविंद, मेरे गोपाला, मेरे भोला, मेरे प्रभु, मैं तुम्हारा हूं ना, तुम्हारा हूं ना, प्रभु बोलो ना, बोलो ना। बे बोले भगवान को बोलना के लिए आप प्रसन्न कर लो, एक दिन में नहीं तो दूसरे दिन, नहीं तो तीसरे दिन, नहीं तो चौथे दिन आपको अंतरात्मा की आवाज आएगी कि हाँ मैं तुम्हारा हूं। बस भगवान तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, संसार सपना मेरा प्रभु अपना। एक बार बे बोले भगवान को बोलते कर डालोगे दो चार पांच दिन में, फिर तो तुमको जो आनंद आएगा, जो रस आएगा, गजब का आएगा। रामकृष्ण परमहंस के पास भगवान राम को लाला रूप में मानने वाला एक साधु आया। उस साधु का नाम था जटाधारी बाबा। रामलाला की पूजा संबत रामलाला की पूजा वो भगवान मानकर नहीं करता था जटाधारी बाबा, रामलाला को अपना लाला मानता था, अपना बेटा मानता था। बेटे उठो, सुबह हो गई रामलाला, ऐसे करके रामलाला का बाल स्वरूप को उठाते, साफ सुथरा करते, नहलाते, कपड़े पहनाते, तिलक करते, भोग लगाते, फिर आंखें मुनते, खा खा अभी तक क्या गया, अरे खानो खाने। तो उनकी ऐसी भावना की दृढ़ता से रामलाला प्रकट होकर उनका भोजन खाते और दिन भर, फिर दोपहर को भोजन करते, फिर रामलाला को बुलाते और रामलाला बालक रूप में भोजन करते। जटाधारी बाबा बड़े मस्ती से रहते, तो रामकृष्ण के यहाँ जैसे साधु घूमते घामते आते हैं किसी मंदिर में ठहरते, ऐसे वो जटाधारी बाबा यात्रा करते करते रामकृष्ण परमहंस काली के मंदिर के पुजारी उनके पास आए दक्षिणेश्वर में। तो रामकृष्ण देखते थे कि जटाधारी महाराज बड़े मस्ती से रहते, तो जरा बारीकी से देखा तो बोले तो रामलाला को अपना बेटा मानकर पूजा करे। भगवान दास्य भाव से भी रिझ जाते हैं, सखा भाव से भी रिझ जाते हैं, वात्सल्य भाव से भी रिझ जाते हैं, प्रेमा भक्ति से भी रिझ जाते हैं। आप किसी भी भाव से भगवान को रिझा लो, वो रिझने को तैयार मिलते हैं, बस रिझाने की तत्परता हो जाए, बेड़ा पार हो। आप कितना पढ़े लिखे हो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास पैसा ज्यादा है या कम है इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप कम पढ़े लिखे हैं कि ज्यादा इसकी कोई जरूरत नहीं। बस आप भगवान को अपना मान लीजिए। आप उसको पिता मानते हैं ये कोई जरूरत नहीं। आप उसको माता माने इसका कोई आग्रह नहीं। उनको आप सखा माने, बंधु माने, पुत्र माने, उनको शिष्य मानने वालों ने गुरु रूप में होकर भी उनसे फायदा उठाया। भगवान को किसी रूप में भी आप मानो। तो दक्षिणेश्वर में रामलाला की पूजा करने वाले जटाधारी बाबा का दर्शन पर्शन करके रामकृष्ण बड़े उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते और जटाधारी बाबा से रामलाला की उपासना की दीक्षा ले ली। भगवान को स्वामी रूप में से तो भजते थे, माता को मां रूप में तो भजते थे, लेकिन 1864 की घटना है, रामकृष्ण परमहंस ने जटाधारी बाबा से दीक्षा ली और भगवान को अपने बेटे के रूप में पूजने की विधि जान ली। अब तो रामलाला को मन ही मन सुबह जगाते, खिलाते, पिलाते। एक दिन दोपहर को जटाधारी रामलाला को भोग लगाते लगाते थक गए, रामलाला प्रकट ही नहीं हुए। अरे कहाँ चला गया, अरे कहाँ गया मेरा रामलाला, भूख लगी होगी। ऐसे करते करते आए तो देखा रामकृष्ण उनको खिला रहे। जटाधारी बाबा दंग रह गए कि अब मेरा बेटा होकर तू इनके पास आया, तेरे को इधर ही सुख मिलता है। अच्छा बेटे महाराज, अब ये मेरा राम तुम्हारा लाला हो गया महाराज, ये इनका मूर्ति और ये खुद मैं आपको सौंपता हूं। जटाधारी को महसूस हुआ कि रोम रोम में सबके हृदय में बसा है और जिस भाव से चाहो उस भाव से वो मेरा प्रभु पुत्र होने को भी तैयार है, सेवक होने को भी तैयार है, अर्जुन का रथ चलाने वाला और शबरी का बेर खाने वाला, सूरदास को प्रेरणा देने वाला और धन्ना जाट के पत्थर से प्रकट होने वाला, जनक के दिल में प्रकट होने वाला, रामकृष्ण के लिए काली के रूप में प्रकट होने वाला वो लाला भी बेटे के रूप में यहीं प्रकट है। बेटे कॉबर पेट का मेरे लाला। ऐसे करते करते जटाधारी बाबा रामलाला की पूजा की सारी विधि तो पहले बता चुके थे, लेकिन राम जी का स्वरूप भी दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण को देकर खुद फिर रमते राम हो गए। अब तू सर्वत्र है, केवल तू मूर्ति में नहीं है, मेरे चित्त में भी है, जल थल में तू है। तेरी सत्ता से आंखें देखती, तेरी सत्ता से जीभ चखती, तेरी सत्ता से दिल धड़कने लेता है, तेरी सत्ता से स्वप्ने आते, प्रभात के स्वप्ने आते, वे सच्चे पड़ते हैं अगर नींद ना करे तो। दूसरे अर्ध स्वप्ने आते, कुछ आंशिक सच्चे पड़ते, तीसरे चिंताजन्य आते हैं, वे झूठे होते, चौथे रोगों के द्वारा स्वप्ने आते, वे भी झूठे होते, लेकिन झूठे और सच्चों को जानने वाला तू तो मेरा रामा, मेरा श्यामा, मेरा प्रभु। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जटाधारी महाराज विचरण करते, सब में एक एक में सब, जटाधारी महाराज की वह उपासना दृढ़ भक्ति में बदल गई। रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को बताते थे कि फिर मैंने वो रामलीला का विग्रह लिया, मैं उनको जगाता, सुलाता, खिलाता, पिलाता, मैं जब बुलाता वो प्रकट हो जाते बालक रूप में। एक बार मैं गंगा में नहाने जा रहा तो मेरे पीछे पीछे, मैं कहा मेरे बाप तू गंगा का पानी में डूब जाएगा, वो मेरी मस्करी करने लगे तो मुझे गुस्सा आया, तो मैं नहीं आओ नहीं आओ मनोखोर तो ना फिर क्यों आते जो मैं नहा के आता हूं, मैं बैठो बैठो तो मेरे पीछे पीछे आए, मैं गंगा जी में डुबकी मारू तो वो भी आ गए, फिर दूर दूर जाए मैं के डूब जाएगा, अरे मर जाएगा क्या करता है, जैसे बेटे को डांटते ऐसे मैं रामलाला को डांटता। फिर मैं नहा के निकला, मैं चलो अब चलो तो गोते मारने लगे और मेरे को मानो चिढ़ाने लग गए, तो मेरे को गुस्सा आया तो मैं उनकी गर्दन पकड़ के पानी में दबोचा दबोचा दबोचा, तो ज्यादा देर दबोचा तो फिर छोड़ा तो उनकी आंखें ऐसी हो गई और मेरे को लगा रे मेरे मेरे रामा मेरे बेटा मेरे पुत्र मैंने तेरे को कष्ट दिया, ऐसे करके मैं रोया। फिर मैंने उनको धान की चीकी खिलाई, चावल के जो चीकी बनती ना गुड़ और चावल फुला के जो ममरे बनते हैं उसकी चीकी खिलाई, तो उसमें धान के कुछ तिनखे रह गए, तो दो तिनखे उनको लगे धान डांगर, तो उनकी जीभ में से थोड़ा सा रक्त का सा, मैं रोया के यशोदा माँ तो मक्खन मिश्री मलाई भी संभाल संभाल के तेरे मुंह में रखती थी, और मैं कैसा कठोर हूं कि तेरे को धान वाली चीकी खिला दी, मेरे रामा मेरे को नहीं आओ मेरे रामा रामा रामा, हे मेरे राम मैं कितना कठोर हूं मैं कितना क्रूर हूं मैं, तो वो नन्ने नन्ने हाथों से मेरे आंसू पूछने लगे और मुझे स्नेह करने लगे। मैं जब राम जी को पुत्र रूप में चाहता था देखना तो उसी रूप में प्रकट हो जाते, जब माँ के रूप में जाकर उनकी आराधना करता तो माँ के रूप में, तो मेरे चैतन्य प्रभु की ये सब लीला है। रामकृष्ण ने अपने शिष्यों के आगे 1864 की ये घटना कही, वो उनके ग्रंथ में। तो आप लोग ये नहीं समझना कि भगवान खाली हमारे बाबा लोगों की मिलकत है या हम लोगों की बपोती है, ऐसी बात नहीं, भगवान सभी के हैं, उतने के उतने हैं। जो वशिष्ठ महाराज के हृदय में प्रकट हुए वही तुम्हारे हृदय में अभी बैठे हैं, जो शिव जी के हृदय में राम जी के हृदय में है मेरे गुरुदेव के हृदय में थे वही के वही तुम्हारे हृदय में है, बस तुम उन्हें अपना सखा मान लो, अपना बंधु मान लो, अपना प्रेरक मान लो, अपना प्रभु मान लो और उनसे बातचीत करो। शुरू में भले तुम्हारे मन की दौड़ी इधर उधर हो, लेकिन थोड़े 10-15 लंबे श्वास लेकर हरि ओम हरि ओम 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 राम 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 राम, फिर से लो श्वास राम 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 राम। आपके पास बल भी है, बुद्धि भी है, मीठी मुस्कान भी है, लेकिन वो मीठी मुस्कान सेल्समैन की अलग है और आपकी पतियों के पति से मिलकर वो मीठी मुस्कान ब्रह्मज्ञानी संतों जैसी हो जाए। आपके पास धन रहेगा लेकिन धनाढ्यों और नेताओं जैसा धन नहीं रहेगा, निर्धनों के आंसू पहुंचने वाला धन हो जाएगा, निसहायताओं की सहायता करने वाला धन हो जाएगा। चाहे रुपए पैसों का धन हो, चाहे बुद्धि का धन हो, चाहे बल का धन हो, चाहे बहुत शिष्यों का लोक संग्रह का धन हो, सब समाज रूपी देवता की पतियों के पति परमात्मा की प्रसन्नता के लिए लग जाएगा। आप अजय हो जाएंगे धरती पर, कृष्ण अजय थे, राम जी अजय थे, महावीर अजय थे, महावीर के आश्रम में उनका रिश्तेदार रहता था गोशालक। गोशालक धीरे धीरे महावीर का जैसे यश और प्रभाव था इसी प्रकार अपना भी चाहता था। ऐसे मुफ्त में यश और प्रभाव कैसे आए? साधन वचन करना पड़ेगा, पतियों के पति में विश्रांति पानी पड़ेगी। गोशालक बिन कमाईए नानका मेनु साधा जैसा कर, बिना कमाई के ही महावीर जैसा यशस्वी होना चाहते थे। गोशालक ने अंदर ग्रुप बना दिया और ग्रुप बढ़ाते बढ़ाते 500 साधुओं का झुंड अपने पक्ष में कर लिया। महावीर ने जब उसे लगाम डालना चाहा तो घोड़ा बेलगाम हो चुका था। जैसे मुशरफ को वहां के प्राइम मिनिस्टर ने लगाम डालना चाहा तो वो मुशरफ उसी पर हावी हो गए, जयराम जी की। लेकिन वो प्रधानमंत्री था, यहां महावीर बाहर के राजा नहीं है, भीतर के राज्य में प्रवेश पाए। गोशालक को जरा लगाम डाली तो गोशालक लगाम में आया नहीं और आश्रम छोड़कर चला गया 500 साधुओं के झुंड को लेकर, और महावीर के खिलाफ बहुत काम किया उसने। साधु को तो रोटी तो मुफ्त की मिल जाती है और कोई काम ही नहीं है, महावीर ऐसे हैं वैसे हैं, उनके आश्रम में ऐसा है ऐसा है, हमने रह के देखा कुछ भी नहीं है, हमारा अनुभव है हमारा अनुभव है हमारा अनुभव है। जो रहते थे महावीर की रोटी खाते थे, महावीर के नाम से महावीर के चरणों में बैठते थे, भिक्षा पाते थे, वो 500 गद्दारों को लेकर निकला हो, और उसने खूब काम किया महावीर के खिलाफ। फिर भी गोशालक को तो मैं बोलता हूं तभी तुम सुनते हो, लेकिन महावीर को तो लाखों लोग जैनी लोग जानते मानते, करोड़ों लोग महावीर का नाम सुनते। आप अपने चित्त को विश्रांति में ले आओगे फिर आपका विरोधी अथवा आपसे गद्दारी करने वाले आप पे कभी सफल नहीं हो सकते। अब वो सफल ना हो इसलिए भजन मत करना, भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि एक बार उसका जानो तो फिर उस पतियों के पति को आप छोड़ नहीं सकते। उमा राम स्वभाव जी जाना, जिसने उस परमात्मा राम का स्वभाव जाना फिर उसका भजन किए बिना उसे रहा नहीं जाएगा। वो परमात्मा ऐसे सत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, कर्म के नियामक है, कर्म के प्रेरक है, कर्म के फलदाता है और पतियों के पति है और अपने आत्म स्वरूप में बैठे।